नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रमुख मेट्रो कॉरिडोर में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पार्क स्ट्रीट में इलेक्ट्रिक रिसीविंग सबस्टेशन का उद्घाटन किया। दिल्ली मेट्रो के पांचवें चरण ए के अंतर्गत केंद्रीय सचिवालय स्टेशन को ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। छोटे उद्यमियों को आसान ऋण की सुविधा देने के लिए दिल्ली सरकार ने ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट के साथ समझौता किया और दिल्ली सरकार ने पानी के बिलों पर विलंबित भुगतान अधिभार माफी योजना की समय सीमा 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 अगस्त की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पार्क स्ट्रीट में इलेक्ट्रिक रिसीविंग सबस्टेशन का उद्घाटन किया। ये संयुक्त सबस्टेशन एयरपोर्ट लाइन, वायलट लाइन और आगामी सेंट्रल विस्टा मेट्रो लाइन को बिजली उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने बताया कि ये सबस्टेशन प्रमुख मेट्रो कॉरिडोरों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि इस नए सबस्टेशन का निर्माण नवीनतम तकनीक का उपयोग करके ग्रीन बिल्डिंग के मानकों के अनुसार किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 18 महीनों के भीतर पूरी की गई ये परियोजना दिल्ली मेट्रो को बिजली कटौती से मुक्त करने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार मेट्रो आधारित परिवहन प्रणाली के माध्यम से शहर को सुगम और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।
कैसे दिल्ली की मेट्रो लाइन निर्बाध काम कर सकें, किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम उन्हें ना हो, उस तरीके से इस पूरे सबस्टेशन को डेवलप किया गया है। नो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर्स की ओर हमारी मेट्रो लगातार बढ़ रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में दिल्ली में मेट्रो का और अधिक विकास हो।
दिल्ली मेट्रो के पांचवें चरण ए के तहत केंद्रीय सचिवालय स्टेशन को ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि इस चरण के कॉरिडोर की मंजूरी के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नेटवर्क एकीकरण में वृद्धि होगी। एक रिपोर्ट।
सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशन मध्यम दिल्ली के एक महत्वपूर्ण इंटरचेंज हब के रूप में कार्य करता है। यह स्टेशन येलो और वायलेट लाइनों के बीच एक जंक्शन के रूप में परिचालित है। अब पांचवें चरण की मंजूरी के साथ यह स्टेशन येलो लाइन, वायलेट लाइन और मजेंटा लाइन विस्तार, आरके आश्रम मार्ग, इंटरप्रेस से सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर की कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस परियोजना से सभी कर्तव्य भवनों को कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे प्रतिदिन लगभग 60,000 कर्मचारियों को और 2,00,000 आगंतुकों को लाभ मिलेगा। इस परियोजना में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आजादपुर, नई दिल्ली, लाजपत नगर, इंदरलोक और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन शामिल है। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में 29 इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन है। चौथे चरण के पूरा होने के बाद इंटरचेंज मेट्रो स्टेशनों की कुल संख्या 43 हो जाएगी और पांचवें चरण के पूरा होने के साथ ही इन स्टेशनों की संख्या बढ़कर 46 हो जाएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए दृष्टि पुनियानी।
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज अटल आदर्श बाल विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री चहल ने कहा कि यह दिल्ली का एक प्रमुख संस्थान है, जिसमें कई प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों ने पढ़ाई की है। उन्होंने कहा कि यह संस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास भी विरासत भी के नेतृत्व के अनुरूप है।
1933 में इसकी शुरुआत हुई और 1918 में इसकी कहीं नींव रखी गई। उस समय से लेकर आज तक दिल्ली से इसका जो जुड़ाव है और कितने अच्छे स्टूडेंट्स इसने निकाले, इसकी बिल्डिंग, इसका आर्किटेक्चर, उसको हम किस तरह से इसको मॉडर्न टेक्निक्स के साथ ऐड कर सकें, एआई सिस्टम को यहाँ अलग से वोकेशनल क्लासेज में हम शुरू कर चुके, 111 इसकी क्लासेज हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि देश का जो छात्र है वो आज का वर्तमान में भविष्य कैसे बन सके।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज कहा कि गुरुओं के सम्मान से जुड़े मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। श्री गुप्ता ने पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी तरफ से इस मामले में न तो अब तक एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराई गई है, न ही शिकायत की कॉपी सौंपी गई है और न ही जांच से संबंधित कोई आधिकारिक रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इस मामले से संबंधित फाइलों को रोका गया है, उससे कई गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं।
जिस तरह से पंजाब सरकार ने फाइल को रोका है और उसमें कोई ना तो एफआईआर की कॉपी दी गई है, ना उसमें कंप्लेनेंट की कॉपी दी गई है, ना वहां की लैब ने जो जांच रिपोर्ट नहीं दी है, यानी कि सब कुछ ऐसा लगता है कोई घाल मिले कॉन्स्पिरेसी की गई है। और उस षड्यंत्र के जो तार है वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तक जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की असेंबली इस मामले को किसी भी रूप में ढीला नहीं होने देगी, क्योंकि गुरुओं के सम्मान का जो विषय है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने पानी के बिलों पर लगने वाले विलंबित भुगतान अधिभार LPSC माफी योजना की समय सीमा को 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 अगस्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज एक संवाददाता सम्मेलन में जल और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि अब तक 3 लाख से अधिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले चुके हैं, जिसके तहत लगभग 1500 करोड़ रूपये का ब्याज माफ किया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के नागरिक सही बिल देना चाहते हैं और पारदर्शी व्यवस्था का साथ भी। श्री सिंह ने कहा कि इस योजना को मिली प्रतिक्रिया ये साबित करती है कि जब प्रणाली निष्पक्ष होती है तो लोग जिम्मेदारी से आगे आते हैं।
जब से ये LPSC की स्कीम हमारी चल रही है, तब से हमने देखा कि लोग अपना बिल क्लियर कराना चाहते हैं, उसको जमा कराना चाहते हैं। ऐसे लोग जिनका पानी का बिल बकाया था, 14,68,000 लोगों का पानी का बिल बकाया था, ये स्कीम जो कल 31 जनवरी को खत्म होनी है 100% वाली, अभी तक 3,30,000 लोग, 14,68,000 लोगों में से यानी कि 20% से ज्यादा लोगों ने इसका फायदा उठा चुके हैं।
दिल्ली सरकार ने आज सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस समझौते के अंतर्गत दिल्ली के छोटे कारोबारियों को अब बैंक से बिना गारंटी 10 करोड़ रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि अब नवाचार और व्यापार विस्तार के लिए पूंजी की कमी रुकावट नहीं बनेगी, जिससे राजधानी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी।
10 करोड़ रुपए तक का लोन इंडिविजुअल को मिल पाएगा। दिल्ली सरकार अपनी गारंटी के साथ ये लोन मुहैया करवाएगी और उनके सपनों को उड़ान दे पाएगी। और अच्छी बात यह है कि इसमें सारी की सारी सेक्टर्स को कवर किया गया है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चाहे वो सर्विस सेक्टर है, रिटेल है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, हर तरह का काम जिसके लिए आपको पूंजी की आवश्यकता है वो इसमें कवर होगा।
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज तथा सफदरजंग अस्पताल के वार्षिक खेल और सांस्कृतिक महोत्सव निर्वाण 2026 में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री सूद ने कहा कि युवाओं की अनुशासनबद्ध ऊर्जा, प्रतिभा और समर्पण ने इस आयोजन को विशेष रूप से प्रभावशाली बनाया है।
जब हम युवाओं की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी के विचार प्रकाश स्तंभ बनते हैं। विवेकानंद जी कहा करते थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। और आज निर्वाण 26 के मंच से मैं विवेकानंद जी का एक और विचार साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, जीना उन्हीं का सार्थक है जो दूसरों के लिए जीते हैं। आप डॉक्टर बनने की राह पर हैं और यह मार्ग सीधे इसी तरफ लेकर जाता है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इकोसिस्टम तेजी से मजबूत हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि विकसित भारत के लक्ष्य में AI की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट में AI का उपयोग होने वाला है, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे नए मटेरियल्स की डिस्कवरी हो, चाहे प्लानिंग अर्बन प्लानिंग हो, चाहे अर्बन ट्रांसपोर्टेशन हो, हर एक क्षेत्र में AI का उपयोग होने वाला है और आने वाले समय में विकसित भारत की जो जर्नी है उसमें AI का बहुत बड़ा रोल होगा।
श्री वैष्णव ने बताया कि फरवरी में नई दिल्ली में होने वाले इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 15 राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। दुनिया के सबसे बड़े AI शिखर सम्मेलन का आयोजन 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम में होगा। सरकार के स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म वेव एक्स ने इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेने के लिए स्टार्टअप से आवेदन आमंत्रित किए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि ये सम्मेलन भारत के तेजी से बढ़ते एआई इकोसिस्टम में सहयोग को बढ़ावा देने और उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधानों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आज महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि और शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रतिवर्ष 30 जनवरी को पूरा देश महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को याद करता है, जो देश के स्वतंत्रता संग्राम के मार्गदर्शक थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर नई दिल्ली की गांधी स्मृति पर आज शाम प्रार्थना सभा में शामिल हुए। इससे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय गृह मंत्री तथा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि सत्य, अहिंसा और नैतिक मूल्यों के बल पर महात्मा गांधी ने न केवल देश को स्वतंत्रता दिलाई बल्कि संपूर्ण विश्व को मानवता और शांति का मार्ग दिखाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2026 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता और सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार प्रदान किए। एक रिपोर्ट।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी श्रेणी में महाराष्ट्र को गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। इसके बाद जम्मू कश्मीर तथा केरल का स्थान रहा। तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार मिला। वहीं दिल्ली पुलिस ने केंद्र सशस्त्र पुलिस बल और अन्य सहायक बलों की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किया। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में संस्कृति मंत्रालय को वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा की पुकार के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को वंदे मातरम 150 वर्ष स्मरणोत्सव और एक नृत्य समूह को वंदे मातरम भारत की शाश्वत गूंज के लिए विशेष पुरस्कार दिया गया। माई गॉव के एक सर्वेक्षण पर आधारित लोकप्रिय पसंद पुरस्कारों में असम रेजिमेंट और CRPF को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार मिला। वहीं गुजरात को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान का स्थान रहा। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने केंद्रीय मंत्रालयों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। प्रिया की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के संकल्प का गणतंत्र दिवस परेड में भव्य प्रदर्शन किया गया।
कर्तव्य पथ पर जो झांकियां थी, कल्चर प्रोग्राम था, वंदे मातरम का गान था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प 2047 विकसित भारत का, उस संकल्प को भी कर्तव्य पथ पे उतारा गया। और हमारे NCC कैडेट, भाई भारत, स्काउट, उन्होंने अद्भुत अनुशासन के साथ प्रदर्शन किया। आज बहुत उम्दा एक भारत श्रेष्ठ भारत का इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता है।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आज अशोक विहार में अवैध शराब आपूर्ति के मामले में एक आपूर्तिकर्ता को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से कुल 3,000 से अधिक क्वार्टर और अवैध शराब तथा एक कार भी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच जारी है। और राजधानी में आज मौसम साफ रहा, धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल सुबह कोहरा छाए रहने की संभावना है और मध्यम बारिश भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान भी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रमुख मेट्रो कॉरिडोर में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पार्क स्ट्रीट में इलेक्ट्रिक रिसीविंग सबस्टेशन का उद्घाटन किया। दिल्ली मेट्रो के पांचवें चरण ए के अंतर्गत केंद्रीय सचिवालय स्टेशन को ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। छोटे उद्यमियों को आसान ऋण की सुविधा देने के लिए दिल्ली सरकार ने ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट के साथ समझौता किया और दिल्ली सरकार ने पानी के बिलों पर विलंबित भुगतान अधिभार माफी योजना की समय सीमा 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 अगस्त की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।